कहते हैं कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान कहते हैं मैं पिता नहीं हूं, पितामह भी हूं, माता भी हूं। इसलिए जब हम छोटे स्कूल में जाते थे तो ये श्लोक बचपन से कान में जाता था, तुमेव माता च पिता त्वमेव। आपने सुना है? तो बचपन में जब छोटे थे, मास्टर टीचर स्कूल शुरू होने से पहले गांव में ये श्लोक बुलवाया जाता था। लेकिन उस समय पता नहीं था कि ये त्वमेव कौन है ना। हमें लगता था कि सब कुछ मेरे जो जिन्होंने जन्म दिया है वही मेरे सब कुछ है। लेकिन ये त्वमेव हमारे ना शिक्षक को पता था ना हमें पता था। लेकिन जब भक्तों की संगति में आते हैं तो पता चलता है त्वमेव कौन है, कृष्ण है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदापिता। और वास्तव में भगवान से बढ़कर हमारा ध्यान रखने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जैसे जैसे हम जीवन बिताते हैं वैसे वैसे इसकी हमें अनुभूति होती है। बल्कि हमें लगता है जीवन भर हम प्रयास करते हैं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में रखने के लिए कि जो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करे। और हम भी अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं कि जिससे हम भी सबसे आगे क्या करें, प्रेम करें। तो इस चक्कर में, ये प्रेम के चक्कर में क्या होते हैं, किसको मिस करते हैं हम, कृष्ण को। कृष्ण से बढ़कर या भगवान से बढ़कर हमसे कोई अधिक प्रेम नहीं कर सकता इस संसार में। और हम भी अपने जीवन में ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिनसे हम सर्वाधिक अपना मन प्राण जिनको अर्पित करना चाहते हैं। वो वास्तव में कौन है, कृष्ण है। इसी कारण से भगवान को कहा जाता है भक्त वत्सल, या असली माता पिता भगवान, जो हमारा सदैव ध्यान रखते हैं। इसी कारण से भगवान क्या करते हैं, भगवान के हृदय में बहुत कष्ट होता है। इसलिए भगवान का जो प्रणाम मंत्र है कृष्ण का, उसमें आता है हे कृष्ण करुणा सिंधु। फिर दूसरा शब्द क्या है, दीन बंधु। अभी एक के बाद एक दोनों शब्द इतने महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कृष्ण को बोला गया है करुणा सिंधु, हे करुणा के सागर। हाँ, करुणा के सागर है कृष्ण, जिनके हृदय में इतनी दया की भावना। और ऐसी दया की भावना किसके प्रति है, दीन बंधु, दीनहीन जो जीव है। हम सब लोग कैसे हैं, दीनहीन पतित हैं, नीच हैं। हाँ, इस भौतिक संसार में भ्रमण कर रहे हैं सुख की तलाश में। तो ऐसे भगवान का हृदय बहुत अधिक द्रवित हो जाता है। हाँ, जैसे कोई रियली ऐसे माता पिता जो देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल कष्ट उठा रहा है, मर रहा है, या बच्चा बहुत दूर किसी जगह है और उसको ना खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए है, तो माता पिता दूर है तो भी उनका हृदय क्या होता है, फटता है, दर्द के मारे दर्द होता है। तो उस समय उसी प्रकार से कृष्ण भी हमसे दूर है। और भगवान कहाँ निवास करते हैं, भगवान अपने धाम में निवास करते हैं, वैकुंठ जो उनका धाम है। तो भगवान का हृदय भी द्रवित होता है, दर्द होता है, और जिसके कारण भगवान चाहते हैं कि इन जीवों को मैं वापस अपने पास ले आऊं। इसलिए भगवान कई योजनाएं बनाते हैं लाने के लिए, वापस लाने के लिए। एक योजना भगवान बनाते हैं, क्या कहते हैं, मैं स्वयं आता हूं, यदा यदा ये धर्मश। जब धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं आता हूं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये तो भगवान की एक योजना। दूसरी योजना क्या है, भगवान कहते हैं कि इस कृष्ण कृष्ण मुझे भूलकर इस जगत में जीव दुख पा रहे हैं, इसलिए उनके कल्याण के लिए भगवान अपने वचनों को भेजते हैं। वचन में जो भगवान ने बोले हुई शिक्षाएं हैं, इसलिए भगवत गीता है, भागवतम है, शास्त्र के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान रुकते नहीं इतना, भगवान वृक्ष के रूप में भी आ जाते हैं। हाँ, कौन से रूप में आए? वृक्ष के रूप में तुलसी महारानी। कौन? तुलसी महारानी के रूप में। पहाड़ के रूप में भी आते हैं। कौन है? गोवर्धन। नदी के रूप में भी आते हैं, गंगा। तो ये सारी योजना किसकी है? भगवान की है। क्यों ये सारी चीजें इस संसार में दी हैं? कितने सारे तीर्थ स्थान हैं, धाम है, भक्त है, अपना विग्रह रूप है, मंदिर है, प्रसाद है, और क्या हो सकता है? आपको याद आ रहा है कुछ? हरि नाम है। और तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान इतने सारे रूपों में एक प्रकार से आते हैं हमारी सहायता करने के लिए। और वैसे ही एक उनका विशेष रूप है, वो कौन सा है? एकादशी। कौन सा रूप है? एकादशी। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं, पुराणों में वर्णन आता है, एकादशी परित्यज्य योऽन्य व्रतम् उपासते स कलस्तम महारत्नम् त्यक्त्वा लोष्ट्रम् हि याचते। तो यहाँ पुराणों में वर्णन आया है कि एकादशी परित्यज्य, कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो एकादशी का क्या करेगा? परित्याग करेगा। यो अन्य व्रत उपासते, एकादशी के अलावा अन्य व्रतों की उपासना करेगा। जैसे बचपन में हम थे तो हमेशा सुनते थे, घर की स्त्रियां, पड़ोसन की स्त्रियां या लोग, कभी मंगलवार का व्रत, कभी सोमवार का व्रत, कभी गुरुवार लक्ष्मी देवी का, तो कभी शनिवार हनुमान जी का, तो फिर पूरे हफ्ते व्रत ही करते रहते हैं। और कुछ और नई देवी भी निकाल लेते हैं कि शुक्रवार में संतोषी माँ, पता नहीं यहाँ है कि नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ये सब था। तो मतलब संडे से लेकर सैटरडे तक लोग व्रत ही करते रहते, चतुर्दशी, त्रयोदशी, पंचमी, बहुत सारी चीजें। तो शास्त्र कहते हैं, और इन सब व्रतों का उद्देश्य क्या है लोगों का? केवल मेरे मन की जो कामनाएं है ना, उनकी क्या हो? पूर्ति हो। मन में तो इतनी कामना है, कामना मीन्स इच्छा। शास्त्र कहते हैं दिन में 30,000 से ज्यादा इच्छा हमारे मन में क्या होती है? उत्पन्न होती है। कितने हजार? और हम एक इच्छा की पूर्ति के लिए कितने जीवन बिताते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। प्रभुपाद ने कहा कि आपका मृत्यु के समय भी आपकी एक इच्छा में जीवन में बाकी रह गई तो भगवान के धाम आप पर जाया नहीं जा सकता। किसी की इच्छा रह गई, अरे चॉकलेट नहीं खाया मैंने, चॉकलेट खाने की भी इच्छा रह गई, प्रभुपाद कहते हैं तो इस संसार में फिर से कैडबरी चॉकलेट खाने के लिए जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए कामनाओं से रहित होना होगा। किससे रहित होना होगा? और ये सारे जो व्रत हैं, ये कामनाओं की पूर्ति नहीं करते, कामनाओं को और बढ़ाते हैं। भागवतम में कहा गया है कि जिस प्रकार से अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है, क्या होगा? और बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से ये भौतिक कामनाएं हैं। भौतिक एक इच्छा की व्यक्ति पूर्ति करने का प्रयास करता है और मे भी वो पूर्ति हो जाए तो तुरंत हजारों कामनाओं का जन्म होता है। तो इस प्रकार से भौतिक कामनाएं हमें हमेशा कष्ट देगी। इसी कारण से वो कहते हैं कि ये जो व्रत आदि है, बाकी व्रत, उनकी उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ये क्यों बोला भगवान ने? भगवान ने बोला क्योंकि वो जानते हैं कि लोग इतने अज्ञानी हैं भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कि वो नाना प्रकार से व्रत, उपासना आदियों का पालन करेंगे जो उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए धोखादायक है या लाभदायक नहीं है। तो यहां कहते हैं स करस्तम महारत्नम त्यक्त्वा लोष्ट्रम ही याचते। स करस्तम मतलब व्यक्ति एकादशी के अलावा बाकी व्रत उपासनाओं के चक्कर में लगा हुआ है और एकादशी को उपमा दी गई है रत्न की। किस चीज की? रत्न है एकादशी, हीरा है जो आपके हाथ में है अभी। और वो कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति होगा जो ये एकादशी रूपी रत्न को अपने हाथ से फेंक देगा मिट्टी में और आगे निकलेगा। तो इसलिए हमें क्या बनना है? मूर्ख नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? बुद्धिमान। बुद्धिमान को शास्त्र में एक शब्द यूज हुआ है, कोविद। कौन सा शब्द है? कोविद। कोविद मीन्स जो बहुत एक्सपर्ट है, बुद्धिमान है। तो इसी कारण से भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हाँ, भजते माम, मेरा भजन में लगता है। हाँ, इस कारण से ये जो एकादशी व्रत है ये कोई सर्वसाधारण नहीं है। एकादशी के कई सारे नाम हैं एकादशी व्रत को। इसको, इस तिथि को कहते हैं, एक शब्द है हरिवासर। क्या शब्द है बोलिए सर? हाँ, हरिवासर। हरिवासर मीन्स हरि का जिसमें वास है या हरि का जो दिन है। अभी हम कहेंगे अरे हरि के क्या है ऐसे अलग अलग दिन, वैसे देखा जाए सारे दिन हफ्ते महीने साल किसके कंट्रोल में है? हरि के कंट्रोल में है, भगवान के कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विशेष दिन है जो भगवान के अपने दिन है। जैसे बताइए जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, राधाष्टमी, और क्या हो सकता है? राम नवमी है, सीता नवमी है, एकादशी है। तो इनको हरिवासर कहा गया है, मतलब श्री हरि का दिवस। और तो शास्त्र कहते हैं कि इन दिनों में स्पेसिफिकली जो भगवान के ये दिन है, इनमें व्रत करना यह हमारा धर्म है। केवल कर्तव्य नहीं है, हमारा क्या है? धर्म है कि हमें इन विशेष दिनों में व्रत उपवास आदि करना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, ये इन दिनों को क्यों देते हैं? ये उसी प्रकार से है कि भगवान इन दिनों को देखकर, जैसे कोई बच्चा है, माता पिता को पता है कि ये रोगों से भरा पड़ा है, बीमार है, लेकिन दवाई नहीं खा रहा है, दवाई हाथ में है खा नहीं रहा है, तो माता पिता क्या करते हैं? थोड़ा मीठा मीठा बोलते हैं और साथ साथ कुछ मिठाई कुछ खिलाते हुए दवाई उसके साथ दे देते हैं, बच्चे को पीछे ले जाइए प्लीज, आगे नहीं आना चाहिए फिर से कोई बच्चा। हरि बोल, इनके लिए हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे कोई नहीं आया क्योंकि वैसे ही कलयुग के जो सुनने में उनकी रुचि नहीं है। हम बैठते तो 10 बार हाथ मोबाइल को देखने के लिए जाते हैं, अभी तक घंटी क्यों नहीं बजे? तो इसलिए शास्त्र कहते कि भगवान की चर्चा में हमेशा कुछ ना कुछ ध्यान भंग करने वाली चीज आएगी। तो हम कहां थे, याद है किसी को मैं क्या चर्चा कर रहा था? मिठाई खा रहे थे। तो माता पिता पता है उनको कि बालक बीमार है, तो उसको मेडिसिन दवाई के साथ साथ दवाई देनी होती है, लेकिन वो खाना नहीं चाहता, तो उसको मिठाई के साथ साथ दवाई देते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान इन विशेष दिनों का आयोजन करते हैं। ये विशेष दिन मिठाई के समान है, किसके समान है? और दवाई क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अल्टीमेटली हमें हरे नाम लेना है, भक्तों का संग करना है, कृष्ण कथा को सुनना है, सेवा में नियुक्त होना है। यह हमसे होता नहीं है, लेकिन जैसे जन्माष्टमी आती है तो साल में हम कभी इतना एक्टिव नहीं होते हैं। तो जन्माष्टमी आते तुरंत तैयार हो जाते हैं सब कुछ करने के लिए। जैसे कई बार लोगों को मिलो तो वो कहते हैं आपके मंदिर तो हम रेगुलर जाते हैं। तो कब जाते हैं? हर जन्माष्टमी को जाते हैं, तो साल में एक दिन जाता है, वो कहता है रेगुलर हो। तो ये सारे जो दिन हैं, ये भगवान के विशेष दिन हैं, जो भगवान ने अरेंज किया है ताकि हम क्या करें, जो असली दवाई है उसको स्वीकार करें। तो भगवान का ये जो एकादशी तिथि है, एकादशी मीन्स एक और दस, ग्यारह दिन ना, एकादशी इसको कहते हैं। तो महीने में 15 दिन के बाद ना एक एकादशी आती है, दो एकादशी और विशेष दिन है जिसका एक नाम है माधव तिथि। क्या नाम है एकादशी का? माधव को बहुत प्रिय है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत लिखा जिसमें वो कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे। माधव तिथि ये भक्ति की जननी है, मतलब भक्ति का जन्म हो रहा है इस एकादशी व्रत का केवल पालन करने से। अरे कोई सर्वसाधारण तिथि नहीं है, बाकी तिथियों के समान ये सर्वसाधारण तिथि नहीं है, बल्कि ये भगवान की बहुत प्रिय तिथि है। क्योंकि वर्णन आता है शास्त्रों में कि जब भगवान ने इस संसार को क्रिएट किया था और साथ ही साथ भगवान ने एक पाप पुरुष को भी बनाया, क्योंकि सृष्टि में हर चीज की आवश्यकता है, तो पाप पुरुष को बनाया जो बहुत भयंकर था। पाप पुरुष का निवास यमलोक में होता है। तो ये सोचकर भगवान कृष्ण स्वयं एक बार यमलोक जाते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण वहां पहुंचे तो यमराज ने उनका स्वागत किया। यमराज कृष्ण के महान भक्त हैं और हमेशा कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। जैसे कृष्ण आए वहां देखने के लिए तो यमराज ने उनको ऊंचे आसन में बिठाया और उनके चरण आदि धोए, उनको प्रणाम आदि किया, और फिर दक्षिण दिशा की ओर से बहुत क्रंदन की आवाज आ रही थी, जोर जोर से चिल्लाने की, रोने की। तो भगवान ने पूछा, यमराज ये आवाज कहां से आ रही है? ऐसे लगता है कि कोई पीड़ित व्यक्तियों की ये आक्रोश है। तो उन्होंने कहा, ये तो ये मनुष्य प्राणी है जिन्होंने इतने नाना प्रकार के पाप कर्म किए हैं, जिन पाप कर्मों के कारण उनको क्या मिल रहा है? दंड मिल रहा है, वो सजा भुगत रहे हैं। बल्कि हम क्या करते हैं, पाप कार्य करते हैं और हमें सोचता है कि अभी तो मैं पुलिस से बच गया हूं, लेकिन असली पुलिस डिपार्टमेंट किसका है? भगवान का है। और भगवान 10 दिशाओं में, हम भगवान की आंखें हैं, भगवान देख रहे हैं। तो उस प्रकार से पाप कर्मों से हमें दंड मिलता है, नरक की नाना प्रकार की यातनाओं को सहना पड़ता है। तो जैसे ये आक्रोश और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो यमराज भगवान कृष्ण को बताते हैं और फिर कृष्ण कहते हैं मैं देखना चाहता हूं। अभी भगवान तो सब जगह है, वो सब चीजों को देखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने जैसे ही देखा कि कैसे ये जो जीव है कितने अधिक कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान के हृदय में फिर से दया की भावना उत्पन्न हो गई। और वो जो दया की भावना थी, वो दया ने ही वास्तव में एक मूर्तिमान स्वरूप धारण किया एक तिथि का, और वो कौन सा तिथि है? एकादशी है। तो भगवान के हृदय में जीवों के प्रति, जो जीव जिस संसार में पीड़ित हैं, चाहे जिसके कारण उनको नरक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, उनके प्रति ये जो दया की भावना जागृत हो गई, उसका मूर्तिमान स्वरूप एक प्रकार से ये एकादशी है, जिसके कारण भगवान ने क्या किया, वहां नरक लोक में सबको उपवास रखवाया, स्पेशली पहला। और देखा गया कि लोग उपवास रखकर इस तिथि में भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं और पूरा यमलोक खाली हो गया, कोई नहीं बचा वहां, सब लोग कहां चले गए? वैकुंठ की ओर सबका गमन हो गया। तो ये देखकर पाप पुरुष और यमराज चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, सारे लोग जा रहे वैकुंठ धाम, हमारे पास काम कुछ नहीं बचा, पूरे दिन हम क्या करेंगे। तो जो पाप पुरुष था उन्होंने भगवान को निवेदन किया कि मैं तो डर गया हूं इस एकादशी से, इतना पावरफुल है। एकादशी मीन्स उपवास करना और भगवान क्या, भगवान का श्रवण कीर्तन में लगना। तो जब पाप पुरुष या यमराज वगैरह दुखी हो गए थे एक प्रकार से, तो उन्होंने कहा हमारे लिए कुछ स्थान दीजिए, कहां हम निवास करेंगे। ये एकादशी इतनी पावरफुल है जिसके कारण व्यक्ति के अनंत जन्मों के पाप कर्म आदि जल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपको कहां स्थान दो। तो उन्होंने कहा जिस दिन एकादशी होगी उस दिन जो अन्न है, ग्रेन्स होते हैं ना, अन्न है विशेष रूप से, हाँ पांच चीजों में, हाँ ये जो पाप पुरुष है वो निवास करता है। इसलिए एकादशी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशाम दिने योन्नम भुक्ते पापम भुनक्ति सहा यह लोकेच चांडालो मृत प्राप्नोति दुर्गति। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन व्यक्ति को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इसमें पाप पुरुष निवास करता है। आज के दिन एकादशी के दिन व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति वास्तव में पाप खा रहा है शरीर में। वैसे पाप, ये शरीर क्यों है हमारे पास, कोई पूछे कि ये शरीर क्यों जीवात्मा के पास है, तो उसका एक सरल उत्तर है क्योंकि हम पापी हैं। ये शरीर होने का अर्थ है कि हम पापी हैं जिसके कारण ये शरीर हमें मिला है। तो एकादशी के दिन पाप पुरुष इस अन्न में निवास करता है और शास्त्र कहते हैं व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि वो ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति इस जीवन में चंडाल के समान है और दूसरा क्या है, मृत्यु के बाद भी उसको उच्च गति प्राप्त नहीं होती। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि इवन आपके घर में कोई अतिथि भी आ जाए एकादशी के दिन तो क्या करना चाहिए, सब पुत्रच सब भार्याच स्वजनेर भक्ति संयुतः एकादशा उपवासेत पक्षयोरुभयोरपि। कहते हैं कि उस अतिथि के साथ पुत्र पत्नी बच्चे सबके साथ भी एकादशी का व्रत हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। और किसी को ये भी नहीं करना चाहिए, इनकरेज नहीं करना चाहिए कि आप अन्न खा सकते हो, अन्न खा लो, हाँ नहीं तो उस व्यक्ति का एकादशी का उपवास भी क्या है, निष्फल है। इस कारण से शास्त्र कहते हैं कि हमें एकादशी जो भक्ति प्रदान करने वाली है। जनरली जो भौतिकतावादी लोग हैं वो एकादशी का उपवास रखते हैं केवल भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो भगवान के भक्त है वो एकादशी का उपवास रखते हैं या एकादशी व्रत का पालन करते हैं। वो क्यों करते हैं, केवल भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो सुनिर्मल प्रेम है उसको प्राप्त करने के लिए। इसी कारण से वैष्णवों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जो सर्वसाधारण लोग हैं वो घर में धन आ जाए, घर की समस्याएं दूर हो जाए, स्वस्थ लाभ हो, इन सारी चीजों के लिए सोचते कि एकादशी का पालन करना चाहिए, लेकिन नहीं। एकादशी का पालन करने का उद्देश्य है कि भगवान के प्रति प्रेम की भावना का उदय हो। अभी हम अपने हृदय को यदि परखें तो हमें अभी हृदय में किसको बिठा लिया है, भौतिक वस्तुओं को, भौतिक व्यक्ति को, भौतिक स्थान को, लेकिन वास्तव में हमारा आकर्षण भगवान के लिए हो जाना चाहिए। अब इसी कारण से हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि हर एक व्यक्ति को 8 से लेकर 80 साल तक, कोई कहेगा ना, कई बार लोग पूछते हैं क्या आयु होनी चाहिए, कौन रख सकता है एकादशी का व्रत। तो पद्म पुराण में कथा आती है कि उस समय एक राजा थे जो अपने राज्य में एकादशी कल है तो आज के दिन भेजते थे हाथी के ऊपर नगाड़े बजाते हुए पूरे राज्य में कि कल क्या है, एकादशी है। जैसे मंदिर में भी आते हो तो कई बार वो पुजारी रखते हो टुमारो इज एकादशी, कल एकादशी है। तो वैसे वो राजा भेजते थे पूरे अपने राज्य में और ये आह्वान करते थे और आदेश देते थे कि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करेगा तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा, और इतना ही नहीं या राज्य से निष्कासित किया जाएगा। इस प्रकार से पुराणों में कई सारी कथाएं आती हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एकादशी व्रत का पालन करने का अर्थ है कि भगवान को प्रसन्न करना। किसको प्रसन्न करना? भगवान को प्रसन्न करना। प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कितने लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन मृत्यु आ जाती है हमारे सामने तो हमें पता चलता है कि हम किसी को प्रसन्न नहीं कर पाए। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में एकादशी व्रत का पालन करने का मतलब ही है भगवान को प्रसन्न करना। अब कोई व्यक्ति गंभीरता से एकादशी व्रत का पालन करता है तो कृष्ण भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ता है। अब कछुए की तरह नहीं, बहुत तीव्र गति से वो आगे बढ़ता है। हाँ, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति वास्तव में एकादशी व्रत का पालन नहीं करता वो व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर रहा है। हाँ, एक पशु के भांति। हाँ, क्योंकि दोनों लाभ है एकादशी पालन करने का। एकादशी पालन करने का उद्देश्य केवल लोग, वैसे एकादशी आती है तो डरते हैं कल एकादशी है, पूरे घर में चर्चा होती है, बच्चे माँ को पूछते हैं, माँ के पति को पूछती है, मतलब सब लोग एक दिन पहले चर्चा करते रहते हैं एकादशी आ रही है, एकादशी आ रही है, और फिर तैयारी होती है मेनू क्या होना चाहिए। हाँ, इतना डर लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि भूखे मरेंगे हम। हाँ, लेकिन शास्त्र आजकल देखा जाए लोग जो मर रहे हैं वो खाकर मर रहे हैं। जैसे भगवान एक स्टोरी सुनाते हैं कि बंदर थे, आप सबने सुनी होगी, फिर से बताता हूँ। एक बंदरों का एक समुच्चय था, पेड़ों में रहते थे बंदर, तो उनको पता चला कि एकादशी पालन करना में भगवान को संतुष्ट करना इतना शक्तिशाली है। तो ऐसे बंदरों ने सोचा कि एकादशी व्रत हम भी करते हैं, तो फिर सारे बंदर इकट्ठा हो गए एक पेड़ के ऊपर कि अभी एकादशी कल सुबह है, तो फिर आज रात को उनकी मीटिंग हो रही थी एकादशी व्रत पालन करने के लिए। और जैसे चर्चा हो रही थी तो कोई व्यक्ति बता रहा था इसका इतना फल है, इतना लाभ है व्यक्ति ने, वो सारे बंदर। फिर किसी ने कहा कि कुछ खाना नहीं चाहिए, और वैसे भी एकादशी का मतलब है कुछ ग्रहण ना करें। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं एक ही ड्रिंक पीना चाहिए एकादशी के दिन, और वो ड्रिंक कौन सा है? हरि नामामृत। क्या है? हरि नामामृत। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते कि एक ही चीज पियो एकादशी के दिन, और वो उसको कहते हैं एकांग भक्ति। भक्ति के 64 अंग है, 64 कार्य करने से आपकी भक्ति बढ़ती है, तो उसमें से एक प्रमुख अंग है जिसको कहते हैं एकांग भक्ति, और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो ये एकादशी का ये मेन अर्थ है। एकादशी में उपवास करना, तो ये बंदरों ने उपवास के लिए रात को मीटिंग हो रही थी और वो चर्चा कर रहे थे, तो किसी ने कहा एकादशी पालन करने से इतना विघ्नस आता है कि चला नहीं जाता, और दूसरे दिन एकादशी का व्रत समय पर तोड़ना होता है, समय निश्चित है इतने बजे से इतने बजे बजे के बीच में एकादशी व्रत को तोड़ना चाहिए। तो बंदर ने सोचा इतने हम वीक हो जाएंगे कैसे तोड़ पाएंगे, और इसलिए वीकनेस से दूर रहने के लिए अच्छा है कि कुछ फल साथ रहने चाहिए हमारे। हाँ, वीकनेस आ गई तो क्या खाओ? फल खाओ। जैसे निर्जला एकादशी अभी गई है, निर्जला का इंतजार बहुत लोग पूरे साल में करते हैं। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि गलती से हमने एकादशी ब्रेक की कोई पूरे साल में, कुछ खा लिया ग्रेन अन्न खा लिया, तो उस व्यक्ति को निर्जला एकादशी रखनी चाहिए कंपल्सरी है, ताकि उसका वो साल का एकादशी व्रत कभी ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है। तो इन बंदरों ने सोचा कि वीकनेस आ जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएंगे, तो उन्होंने सोचा एक फल रखते। तो दूसरा बंदर बोला, इतना कमजोर हो जाते एकादशी के दिन कि फल काटने की भी शक्ति नहीं होती। दूसरे ने कहा, चाकू कहाँ है, काट के रखते सामने, घर में भी करते ना ऐसे, फ्रिज में रखते काट के। और फिर तीसरा कहता है, काट के रखवा रहे, उठाने की शक्ति नहीं होगी। बंदरों का यहाँ बैग होता है, देखा है आपने, कुछ भी डालो तो बड़ा बहुत तेजी से लेते और डालते रहते। अब गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो पता चलेगा, यहाँ रख देते हैं और फिर खाते रहते निकाल कर। तो वैसे ही एक महाशय बंदर ने कहा कि बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, अभी टुकड़े करो और कहाँ रख दो, थैली में। फिर उससे और बुद्धिमान था, उसने कहा इतने कमजोर हो जाते हैं कि चबाने की शक्ति नहीं होती। तो क्या करने लगे, सब चबाने लगे। तो उनका एकादशी वैसे खत्म हो गया। ऐसे ही लोग, हाँ, यदि हम डरे इस बंदरों की तरह तो हम एकादशी व्रत कभी भी पालन नहीं कर सकते। एकादशी का मतलब केवल उपवास नहीं है। उपवास मीन्स उप मीन्स नजदीक और वास मीन्स रहना। तो वास्तव में एकादशी का मतलब है कि भगवान के नजदीक निवास करना। और इसलिए भगवान चाहते हैं, गीता में भगवान ने कहा मेरे नजदीक निवास करो। मेरा स्थान कौन सा है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका। ऐसा मेरा आध्यात्मिक धाम है जहां ना सूर्य चंद्रमा बिजली की आवश्यकता है, वो स्वयं प्रकाशमान है। तो एकादशी के दिन यदि हम भगवान के नजदीक रहने का प्रयास नहीं करते या नजदीक नहीं जा रहे हैं तो एकादशी नहीं है। प्रभुपाद के एक शिष्य ने कहा, प्रभुपाद आज तो हम बिल्कुल खा नहीं रहे हैं, कुछ पी भी नहीं रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब फिर एक बार दूसरा भक्त गया, प्रभुपाद आज तो हमने बिल्कुल कुछ खाया नहीं पिया नहीं। प्रभुपाद ने कहा सोना मत, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ खाते नहीं पीते नहीं और दिन भर लेटे रहते हैं बेड के ऊपर, और उनका दृष्टि किस पर होता है, घड़ी के ऊपर, टाइम क्या हो गया, कब दिन जाएगा, कब उपवास तोड़ने का समय आएगा, कहां देखते रहेंगे, घड़ी को देखते रहेंगे। तो इस कारण से उपवास का मतलब ही है कि भगवान के नजदीक निवास, भगवान के नजदीक हम जाए। उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणेषु, उपवासस्य विज्ञेयः सर्व भोग विवर्जिता। उपवास का मतलब ही है कि सारे भोगों से अलग होकर क्या करें, हम भगवान के निकट निवास करने का प्रयास करें। और भगवान के निकट निवास करने का अर्थ है कि क्या करना, एकादशी के दिन अपने भौतिक कार्यों को कम से कम करना। एकादशी आ रही है पता है तो पहले से ही तैयारी करना कि उस दिन मेरे पास भौतिक कामकाज कम होने चाहिए। उस दिन का जो समय है वो भगवान के लिए मुझे नियुक्त करना है, भगवान के लिए इस्तेमाल करना है, भगवान का अधिक से अधिक नाम संकीर्तन, उनका कथा श्रवण, भागवतम आदि को पढ़ना और उनके नामों का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम वास्तव में एक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जब बहुत छोटे थे, अभी बालक के थे, उनका नाम निमाई था, स्कूल में पढ़ते थे, तो उनकी जो माता है सची माता कभी एकादशी व्रत नहीं रखती थी। भारत में ये प्रथा है कि जो विधवा स्त्रियां हैं वही एकादशी रख सकती हैं, ऐसा जनरली है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनकी माता कब सची माता कभी एकादशी का व्रत पालन नहीं करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक दिन चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह उठे और अपनी सच्ची माता के पास गए और उनको उन्होंने कहा कि हे माता, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो सच्ची माता ने कहा कि क्या मांगना चाहते हो? तो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में कहते हैं उन्हें कि आप क्या करो, एकादशी व्रत का पालन करो। किस चीज का पालन करो? एकादशी व्रत का। इसका पालन करने से मैं अत्यधिक खुश हो जाऊंगा या सुखी हो जाऊंगा। तो तब से जो सच्ची माता है एकादशी व्रत का पालन करती है या उन्होंने पालन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी हमें हमेशा प्रेरित करते थे कि एकादशी पालन करने से क्या होगा कि हमारे अंदर भगवत भक्ति में बने रहने की दृढ़ता आ जाती है, तपस्या का भावना बढ़ता है और भगवान के प्रति ही सेवा की जो भावना है वो अधिक से अधिक बढ़ने लगती है। इस कारण से व्यक्ति को जो एकादशी आती है उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें भक्तों का संग करे, मिलकर उस दिन मंदिर में आए, हम मिलकर हरि नाम का जप करें और अधिक से अधिक समय निकाल कर क्या करें, ग्रंथों को पढ़े या कृष्ण कथा आदि को सुने। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति करता है तो वो सरलता से भगवान का प्रिय हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम से बताते हैं कि एकादशी का व्रत जब भक्त पालन करता है तो इतना शक्तिशाली हो जाता है, भगवान का अत्यधिक प्रिय हो जाता है। जैसे महाराज अम्बरीश की तरह, अम्बरीश दुर्वासा मुनि एक दिन महाराज अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश महाराज जो राजा थे पूरे संसार के, और दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं अभी स्नान करके आता हूं, उस दिन एकादशी थी और दूसरे दिन एकादशी का व्रत तोड़ने का समय आया था। तो दुर्वासा मुनि ने कहा मैं जा रहा हूं स्नान करने के लिए। तो दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए गए, अम्बरीश महाराज को एकादशी व्रत तोड़ना था एक प्रकार से उन्हें, तो देखा कि व्रत तोड़ने का समय जा रहा है और ये दुर्वासा मुनि आ ही नहीं रहे हैं। बल्कि गृहस्थ का यह धर्म है कोई अतिथि आता है तो उसे पहले भोजन कराना और फिर बाद में खाना। तो ये दुर्वासा मुनि जब वापस आए तो उन्होंने उनको पता चला कि ये जो महाराज अम्बरीश है उन्होंने मेरे आने से पहले जल ग्रहण किया है, पानी पी लिया है। तो उनको इतना गुस्सा आया दुर्वासा मुनि को कि उन्होंने अपने जटाओं से एक बाल निकाल कर ऐसे डालते हैं और एक आसुर की उत्पत्ति करते हैं अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि जहां मेरा भक्त मेरे भक्ति में लगा रहता है तो सदैव मेरा जो सुदर्शन चक्र है वो भक्तों की रक्षा के लिए होता है। भगवान सुदर्शन चक्र क्यों अपने हाथ में रखते हैं? भक्तों की रक्षा के लिए, सदैव भक्तों की सुरक्षा के लिए सुदर्शन भक्तों के साथ होता है। तो उसी समय सुदर्शन वो दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगता है। दुर्वासा मुनि शिवजी के पास जाते हैं, शिवजी कहते मैं आपको नहीं बचा सकता। दुर्वासा मुनि अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, सब जगह घूमते हैं और फाइनली भगवान विष्णु के पास भी पहुंचते हैं। भगवान विष्णु क्या कहते हैं उन्हें कि हे दुर्वासा, महाराज अम्बरीश मेरा प्रिय भक्त है। और महाराज अम्बरीश इतने शक्तिशाली थे कि वो राजा होते हुए भी भगवान की सेवा कभी उन्होंने छोड़ी नहीं है। भागवतम में उनके बारे में वर्णन आता है कि महाराज अम्बरीश ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। कोई व्यक्ति पूछे कि भक्ति क्या है तो सरल है, भक्ति क्या है कि सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना ही भक्ति है। सवे मन कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन से कृष्ण का स्मरण करना, आंखों से भगवान का दर्शन करना, जीवा से उनके नामों का उच्चारण करना, हाथों से उनकी सेवा करना, पांवों का इस्तेमाल उनके मंदिर में जाना, परिक्रमा करना, कानों का इस्तेमाल उनकी कथाओं को सुनना। तो इस प्रकार से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। तो ये सारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और फिर स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम की भावना हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। तो ऐसे दुर्वासा मुनि जब भगवान विष्णु के पास गए हैं तो दुर्वासा मुनि को कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपने मेरे महान भक्त के प्रति क्या किया है, अपराध किया है, और जिन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया था। तो ऐसे दुर्वासा मुनि को, इतने पावरफुल दुर्वासा मुनि है, हाँ जब बचपन में होते किसी और मुनि का नाम आपने ज्यादा सुना नहीं होगा, बचपन में से सबसे ज्यादा किसी मुनि का नाम सुना है तो किसका, दुर्वासा। घर में लोग एक दूसरे को कुछ गाली भी देनी है तो दुर्वासा का नाम लेकर देते हैं। तो दुर्वासा से हर कोई डरता है, लेकिन ऐसे दुर्वासा मुनि भी भयभीत हो गए थे महाराज अम्बरीश के कारण। हाँ, तो आकर दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज जिन्होंने अभी अभी एकादशी व्रत पूरा किया था उनके चरणों में आकर गिरते हैं और महाराज अम्बरीश उनको क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भागवतम में ऐसे कई उदाहरणों से ये शिक्षा देते हैं कि वास्तव में भक्त केवल भोजन खाकर शक्तिशाली नहीं होता, भक्ति में शक्ति संपन्न होना है तो क्या करना होगा, तपस्या को स्वीकार करना होगा। हाँ, तपस्या भौतिक जीवन में भी हम करते हैं, किसको रोज ऑफिस जाकर 8 घंटे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन वो भी क्या है, तपस्या है। तो उसी प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें अपने जीवन में स्वयं ही तपस्या, का मतलब है कि हमें अच्छा लगे या न लगे लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कष्ट को अपने जीवन में स्वीकार करना, उसको क्या कहते हैं, तपस्या। अभी बैठकर कृष्ण कथा सुनना अच्छा लगता है हमें, नहीं, 1 घंटा बैठना, लेकिन फिर भी हम बैठते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, मैं इससे शुद्ध हो जाऊंगा या शुद्ध हो जाऊंगी। तो इसको हम स्वयं ही स्वीकार करते हैं तो वो वास्तव में तपस्या है। इसलिए हम भगवान कहते कि ये तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करती है। यज्ञ दान तपश्चैव, हाँ, कि यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी क्या करनी नहीं चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, त्यागनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी भी एक ऐसा व्रत है, तिथि है, जिसके बारे में कई सारी चर्चाएं हैं, हाँ, जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए ताकि जिसके द्वारा भगवान के प्रति जो भक्ति की भावना है वो बहुत अधिक तीव्र हो जाती है। और आज के दिन वास्तव में एकादशी के दिन व्यक्ति को पहले से ही प्लानिंग करना चाहिए और हरिनाम का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की।